इप्सिता ने आधा घूंघट ओढ़ रखा था, उसका चेहरा आधा ढंका हुआ था, फिर भी सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। वो किसी महारानी सी लग रही थी। उसके आभूषण और वस्त्र राजघराने के होने का प्रमाण दे रहे थे। सारा श्रृंगार इतना भारी था कि उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। नंदिनी उसके हाथ थामे हुए थे और बड़े ध्यान से उसे नीचे उतार रही थी। जैसे ही उदय की नज़र इप्सिता पर पड़ी, वो फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ा और दूसरे हाथ से इप्सिता को सहारा दिया। सीढ़ियां उतरकर इप्सिता जैसे ही हाल में बने विशाल मंडप के सामने रुकी, मासा और अर्पिता उसके पास आ गईं। इप्सिता की माँ भी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। तभी मासा ने नोटों की गड्डी इप्सिता के ऊपर से उतारी और उसे पीछे खड़े मैनेजर को देते हुए कहा, लीजिए, इसे आप सब आपस में बांट लीजिए। हमारी राजवंशी परिवार की होने वाली बहू को किसी की बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए। इप्सिता ने उनकी बात सुनकर धीरे से उनकी ओर देखा। तभी अर्पिता इप्सिता के बगल में आकर बोली, भाभी सा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आज तो भाई सा आपके चेहरे से अपनी नज़र ही नहीं हटा पाएंगे। इतना कहकर अर्पिता ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में बिठा दिया। नंदिनी इप्सिता के पीछे खड़ी रही। पंडित जी ने इप्सिता की ओर देखकर कहा, वधू यहाँ मौजूद है तो जल्दी से वर को बुलाइए, वरमाला का समय हो गया है। इप्सिता ने पंडित जी की बात सुनते ही घूंघट के अंदर से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अभिमन्यु कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मासा ने पंडित जी की बात सुनकर अर्पिता की ओर देखते हुए कहा, अर्पिता, अभिमन्यु कहाँ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप जब उन्हें कपड़े देने गई थीं तो वो तैयार तो हो गए थे ना? अर्पिता ने कहा, हाँ मासा, भाई सा तैयार हो रहे थे, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। मासा ने अर्पिता की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाया। अर्पिता अभिमन्यु के कमरे की ओर जाने ही वाली थी कि समर्थ बोला, आप रुकिए अर्पिता, हम अभिमन्यु को लेकर आते हैं। अर्पिता ने समर्थ की बात सुनते ही मासा की ओर देखा। मासा ने पलकें झपकाईं। समर्थ सीधे अभिमन्यु के कमरे में चला गया। इप्सिता मंडप में बैठी रही। तभी इप्सिता की माँ मासा के पास आकर खड़ी हो गईं। मासा ने आसपास खड़े लोगों की ओर देखते हुए कहा, आप सब आराम से एंजॉय करिए, जैसे ही अभिमन्यु आएंगे हम शादी की रस्में शुरू कर देंगे। आधे घंटे से ज्यादा बीत गए लेकिन अभिमन्यु अभी तक मंडप में नहीं आया था। इप्सिता अकेली मंडप में बैठी थी और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। इप्सिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने दिल को शांत करे। इप्सिता ने अपने हाथों में मुट्ठी बांध ली थी। उसके हाथों की हलचल देखकर नंदिनी इप्सिता के बगल में जाकर बैठी और धीमी आवाज में बोली, इशू, डोंट वरी, जीजू आते ही होंगे, तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनी पर जवाब नहीं दिया। तभी मासा ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, एक घंटा होने वाला है, अभिमन्यु को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? पंडित जी ने मासा और इप्सिता के माता पिता की ओर देखते हुए कहा, वर कहाँ है और कितनी देर लगेगी? शादी का शुभ मुहूर्त बीत रहा है, अगर एक बार शुभ मुहूर्त बीत गया तो? पंडित जी इससे पहले कुछ और बोल पाते, मासा ने अर्पिता की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, अर्पिता, जाइए और जाकर अभिमन्यु को लेकर आइए, हद होती है इंतजार की भी। ऐसा भी क्या तैयार हो रहे हैं वो, जो उन्हें तैयार होने में एक घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। अर्पिता मासा की बात सुनकर तुरंत अभिमन्यु के कमरे की ओर गई। उसने कमरे में अभिमन्यु को आवाज लगाई, भाई सा, क्या कर रहे हैं आप? क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अर्पिता ने दरवाजा खटखटाया और तेज आवाज में कहा, भाई सा, दरवाजा खोलिए। अर्पिता ने कई बार आवाज लगाई लेकिन अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्पिता थोड़ी परेशान हो गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसने चारों ओर देखा। अभिमन्यु के कपड़े बिस्तर पर बिखरे पड़े थे लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं दिख रहा था। अर्पिता बहुत परेशान हो गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, भाई सा, क्या आप वॉशरूम में हैं? अर्पिता को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगी। पूरे कमरे में देखने के बाद भी अभिमन्यु नहीं मिला। उसने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अभिमन्यु को कॉल करने लगी लेकिन अभिमन्यु ने कॉल रिसीव नहीं किया। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर जाकर सबको क्या जवाब दे। अगर किसी ने पूछा कि अभिमन्यु कहाँ है तो वो क्या बताएगी? अर्पिता के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अभिमन्यु को कहाँ ढूंढे। उसे अभिमन्यु की बहुत चिंता हो रही थी। उसने बार बार अभिमन्यु को फ़ोन किया लेकिन जब बात नहीं हो पाई तो वो सिर पकड़कर बिस्तर पर ही बैठ गई। उसने कहा, भाई सा, कहाँ जा सकते हैं इस तरह अपनी शादी छोड़कर? मासा को हम क्या जवाब देंगे? अर्पिता ये सब सोच ही रही थी कि बाहर मंडप में सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अभिमन्यु अभी तक मंडप में नहीं आया था। इप्सिता पिछले एक घंटे से मंडप में अकेली अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। अब इप्सिता के माता पिता के साथ साथ नंदिनी और उदय को भी थोड़ी टेंशन हो रही थी। इप्सिता ने नंदिनी की ओर देखा। इप्सिता का चेहरा पीला पड़ रहा था। नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़कर उसे शांत रखने की कोशिश की। तभी मासा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ रह गई अर्पिता? चेक करो, कहाँ है अभिमन्यु?
तभी मासा की नजर अर्पिता पर पड़ी, जो भारी कदमों से उनकी ओर आ रही थी। मासा जैसे ही अर्पिता को अकेले आते हुए देखा, वो गुस्से से भर गई। अर्पिता उनके सामने जाकर खड़ी हुई। मासा ने तेज आवाज में पूछा, अर्पिता आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? अभिमन्यु कहाँ है? आप तो उन्हें लेने गई थी ना? अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मासा, हम लेने तो गए थे भाईसा को, लेकिन जब हम उनके कमरे में गए तो हमने देखा भाईसा वहां नहीं है। अर्पिता की बात सुनकर वहीं खड़े जयराज ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, साले सब तो बड़े बेवकूफ निकले, इतनी खूबसूरत लड़की से शादी होने वाली थी फिर भी नखरे कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग गए। जयराज आज ही उदयपुर राजमहल में अभिमन्यु की शादी में आया था। इससे पहले वो किसी भी फंक्शन में नहीं आ पाया था। उसने अपने पिता को भेज दिया था क्योंकि उसे कोई जरूरी काम था। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, इप्सिता के माता पिता दोनों कन्फ्यूज होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने अर्पिता से पूछा, क्या बोल रही हैं आप अर्पिता? अभिमन्यु अगर अपने कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ जा सकते हैं? अर्पिता जवाब नहीं दे पाई। तभी मासा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और अभिमन्यु का नंबर डायल किया। घंटी बज रही थी लेकिन अभिमन्यु ने कॉल रिसीव नहीं किया। अर्पिता ने कहा, कोई फायदा नहीं मासा, हमने कई बार भाईसा का फोन ट्राई किया लेकिन वो कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे हैं। मासा ने पीछे खड़े नौकरों की ओर देखते हुए कहा, आप सब यहाँ खड़े होकर हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए जाकर अभिमन्यु को ढूंढिए, वो अपनी शादी वाले दिन इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हैं? अगर उन्हें किसी जरूरी काम से कहीं जाना था तो वो हमें बता सकते थे। अर्पिता ने कहा, मासा कहीं भाईसा किसी खतरे में तो नहीं है ना? मासा ने अर्पिता को घूरते हुए कहा, अभिमन्यु को भला किस चीज का खतरा हो सकता है, और वैसे भी अगर वो होटल में है तो अभी थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। अभिमन्यु को सभी लोग ढूंढने लगे थे। वहीं इप्सिता के माता पिता हैरानी से मासा की ओर देख रहे थे। मासा ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, आप लोग हम पर भरोसा रखिए, हम अभी अभिमन्यु को बुलाते हैं। इप्सिता ये सब चुपचाप सुन रही थी, उसके कानों में हर एक की बातें सुनाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु कहाँ है?
इप्सिता की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे क्या पूछे। वो दुल्हन के लिबास में थी और इतनी लोगों के बीच कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो नंदिनी और उदय की ओर देखने लगी। उदय के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। उदय बार बार नंदिनी और इप्सिता की ओर देख रहा था। तभी इप्सिता ने मन ही मन कहा, कहीं अभिमन्यु को कुछ हो तो नहीं गया? हमारे पास जो मैसेज आया था कहीं वो इसीलिए तो नहीं था? इप्सिता के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। तभी इप्सिता ने मन ही मन कहा, कहीं अभिमन्यु इस शादी से पीछे तो नहीं हट रहे? इप्सिता के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, वो अभिमन्यु की बातें याद करने लगी। जिस तरह से अभिमन्यु ने उसे सारी बातें सच सच बताई थी कि वो किस तरह से ये शादी करने के लिए तैयार हुआ है, उसका इस शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी बातें वो अपने मन में दोहरा रही थी। तभी इप्सिता ने कहा, कहीं अभिमन्यु अवंतिका की वजह से ये शादी कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं? इप्सिता के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया, डर के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, अभिमन्यु हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, वो इस तरह हमारी और हमारी फैमिली की इज्जत के साथ तो नहीं खेल सकते, हम इतने दिनों में उन्हें इतना तो समझ गए हैं, वो एक बहुत रिस्पॉन्सिव इंसान है। इप्सिता ये सारी बातें अपने मन में बोलकर खुद को शांत और पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही थी। तभी इप्सिता ने कहा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते थे तो वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं है? इप्सिता ये सोच ही रही थी कि उसने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी अभिमन्यु की माँ और बाकी लोगों की ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र समर्थ पर पड़ी, जो धीरे धीरे मासा और पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मासा समर्थ की ओर देखकर बोली, समर्थ कहाँ थे आप? अभिमन्यु कहाँ है? आप तो उन्हें लेने गए थे ना? समर्थ ने मासा की बात सुनी और मासा की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मासा, अभिमन्यु। इतना बोलकर समर्थ चुप हो गया। अर्पिता, जो समर्थ की ओर कन्फ्यूजन से देख रही थी, वो समर्थ के पास आकर बोली, क्या बात है समर्थ, भाईसा कहाँ है? आप हमें बताइए। आप जब उनके कमरे में गए थे तो क्या भाईसा कमरे में थे? समर्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो कमरे में था। लेकिन इतना बोलते बोलते समर्थ रुक गया और मासा ने समर्थ को घूरते हुए कहा, लेकिन क्या समर्थ? कृपया अगले भाग की प्रतीक्षा करें।